हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के रविवार के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम क्लास में। भगवान ने गोवर्धन पूजा का उद्घाटन किया और इसके द्वारा ये तीसरी शिक्षा कि भगवान के नज़रों में पूजनीय कौन है। जब भगवान और भगवान के प्रतिनिधि किसी को पूजनीय मानते हैं तो वो है उस व्यक्ति की योग्यता, जो कि उस व्यक्ति ने अपने उदाहरण से, अपने समर्पण से, अपने चरित्र से सिद्ध किया। और गोवर्धन भगवान के भक्तों में एक ऐसे भक्त हैं कि जिन्होंने कभी इस प्रकार की पूजा, जो आज गोवर्धन को जिस तरीके से, जिस स्तर पर पूजा जाता है, वो इसलिए है कभी उन्होंने उसकी याचना नहीं की। तो हम रामायण से ऐसे ही एक भगवान के पार्षद, भगवान के शुद्ध भक्त भरत, इनके चरित्र की चर्चा कर रहे हैं। भरत हालांकि कैकेयी के पुत्र, परंतु उनका समर्पण प्रभु श्री राम के प्रति ऐसा अनन्य था कि कैकेयी ने जो सोचा था, एक दृष्टिकोण से कैकेयी का षड्यंत्र नहीं था, मंथरा का षड्यंत्र था, जिसके झांसे में कैकेयी आ गई। नहीं तो उससे पहले कैकेयी भी भगवान श्री राम की ऐसी माता बताई गई है कि कौशल्या से पहले प्रभु श्री राम कैकेयी को अपनी मां मानते थे। तो जो उसने योजना, जो उसने सोचा कि मैं अपने पुत्र के लिए, भरत के लिए ये प्रयोजन कर रखूं, तो वो सब कुछ विफल हुआ। और भरत अब जब अपने ननिहाल से अयोध्या लौटे हैं, तो हमने हमारे पिछले सिटिंग्स में सुना कि कैसे जब वो कैकेयी को देखते हैं, ये 22वीं शिक्षा कि पूरा अयोध्या जो है वो एक खंडर बन चुका है, केवल दो शख्स को छोड़कर, कैकेयी और मंथरा। तो कैकेयी का महल वो कैकेयी की तरह पूर्ण सुसज्जित, और ठीक उसके बाहर पूरी अयोध्या नगरी वो एक श्मशान भूमि। तो यहां पर भरत क्या देख रहे हैं, एक तरफ है बेजान अयोध्या और दूसरी तरफ भरत की मां कैकेयी, जो कि सुसज्जित शोक युक्त अयोध्या में प्रफुल्लित कैकेयी, अयोध्या जो कि पूरे निराशा के समंदर में डूबा हुआ, निराशा जनक अयोध्या में कैकेयी बड़ी आशा से गीत गाते हुए, अपने आप को सजाए हुए किसकी प्रतीक्षा में है, भरत की प्रतीक्षा में है कि अब पता चलेगा उसे कि इतना जो कुछ उसने भरत के गैर मौजूदगी में किया भरत के लिए, अब भरत से क्या मिलने वाला है। तो राम रिक्त अयोध्या में काम युक्त कैकेयी, और विजयादशमी हमने मनाई कल, सब लोगों को उसकी बधाई। इतनी बधाइयां मिल गई हैं दशहरे की, ऐसा लगता है रावण को हमने ही मारा है। परंतु कलयुग का दुर्भाग्य देखिए कि हम कलयुग में जो एक बहुत ही विचित्र प्रकार की बुद्धि लेकर जी रहे हैं, इसलिए मैंने क्या कहा, विचित्र प्रकार की बुद्धि। कैकेयी ने राम को निष्कासित किया और कैकेयी की ये जो विचित्र बुद्धि है इसका नमूना है कलयुग की बुद्धि, कि राम का ऐश्वर्य, अयोध्या का ऐश्वर्य, वो सब चाहिए अपने स्वयं के लिए, परंतु बिना राम के, राम नहीं चाहिए। तो ये है राम रिक्त राम राज्य का सिद्धांत। कैकेयी वांटेड भरत विदाउट राम, शूर्पणखा वांटेड राम विदाउट सीता, रावण वांटेड सीता विदाउट राम, सुग्रीव वांटेड राम विदाउट लक्ष्मण। तो ये सब लिस्ट पढ़ने के बाद हमें लगता है कि बड़ी भयावह लिस्ट है, परंतु कहीं ये ना हो जाए कि हम भी इस लिस्ट में शामिल हों कि हम भी कृष्णा कॉन्शियसनेस के फ्रिंज बेनिफिट्स चाहते हैं परंतु कृष्ण शरणागति नहीं चाहते। सो वी वॉन्ट बेनिफिट्स ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस विदाउट कृष्णा। हम सब के अंदर ये थोड़ी मात्रा में कैकेयी, थोड़ी मात्रा में शूर्पणखा, थोड़ी मात्रा में सुग्रीव, थोड़ी मात्रा में वाली, रावण, बहुत मात्रा में होता है वो, तो राम भी है। ये नहीं कि राम नहीं है, राम की मात्रा भी है, परंतु हर समय जैसे मार्केट में मंदी और चढ़ाव चलता रहता है, तो वैसे हमारे कृष्ण कॉन्शियसनेस मार्केट में भी कभी राम भक्ति की मंदी चलती है, फिर जब विजयादशमी आती है तो फिर सारे रावण जलते हैं, हाँ बस सारे उसके 10 मुंह जलाकर भस्म करके रख देंगे, फिर उसके बाद में दिवाली आती है, फिर थोड़ा मूड चेंज होता है। तो प्रश्न ये है कि कैकेयी ने जो ये योजना रची कि अयोध्या को राम रिक्त बनाओ, तो हमारा अंतिम स्लाइड ये था पिछली बार का, क्या वास्तविक रूप में कैकेयी कर पाई। हम देखते हैं कि भारत में भी कई ऐसे एलिमेंट्स हैं जो भारत को भारतीयता से मुक्त करना चाहते हैं। भारत की भारतीयता क्या है? वैदिक संस्कृति। तो वैदिक संस्कृति से रिक्त भारत, जैसे कहते हैं ना कि आजकल ये आधुनिक युग में बिना ये सब कंप्यूटर स्मार्टफोन्स के अलावा कोई जी नहीं सकता। पता है ये कंप्यूटर भी किस पर चलता है? उसको कंप्यूटर की भाषा में बोलते हैं रैम। बिना राम के ये भी नहीं चलेगा। अब देखो, मैं जब राधा गोपीनाथ मंदिर में था तो वहां पर, अब राधा गोपीनाथ मंदिर वो साउथ बॉम्बे में, एक प्रकार से बॉम्बे का सबसे पॉशेस्ट एरिया कहा जाता है, पता नहीं क्यों अभी तक मुझे प्रश्न चिन्ह है, लेकिन बोलते हैं ऐसा कि पॉशेस्ट एरिया है, वन ऑफ द पॉशेस्ट एरिया बॉम्बे का। तो वहां पर बहुत आलीशान ऐश्वर्यशाली घरों में रहने वाले लोग रहते हैं साउथ बॉम्बे में, और कई बार वहां पर मैंने देखा कि बड़ी बड़ी गाड़ियों में वो लोग आते हैं, ऐसी लंबी चौड़ी गाड़ी वो पूरा गेट घेर लेती, ऐसे उनकी ऑडी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऐसे ऐसे नाम अपने सुने भी नहीं होंगे गाड़ियों के नाम, जैगुआर, और इनकी कीमत अगर आप सुनोगे एक एक गाड़ी करोड़ों की, केवल गाड़ी करोड़ों की, वो भी कोई और चलाता है, ड्राइवर चलाता है। अभी सोचो इतनी बड़ी गाड़ी, मैं कई बार देखता था इतनी बड़ी गाड़ी, अभी किसी को चलाने का भी उसको आनंद मिलना चाहिए ना, इतने उन्होंने बेशकीमती उसके अंदर कंट्रोल्स रखे हुए हैं, लेकिन चलाता वो ड्राइवर है, चलाने का मजा उसको मिलता जाता है। मालिक जो है पीछे बैठा परेशान ऑफिस के टेंशन से, उससे ज्यादा घर के टेंशन से, उससे ज्यादा इतनी बड़ी गाड़ी खरीद ली उसको मेंटेन करना है। लेकिन मैंने देखा एक बार इतनी बड़ी वो जैगुआर, लेकिन उसके सामने नींबू मिर्ची लटकाया हुआ है, तो मैंने कहा देखो चाहे कोई कितना भी अपने आप को मॉडर्न कह ले इंडिया में, उसने बहुत से उसके गाड़ी के इंश्योरेंस निकाले होंगे, होते हैं इतनी बड़ी गाड़ी के तो बहुत कीमती इंश्योरेंस निकाला होगा, डेफिनेटली निकाला होगा इंश्योरेंस, चाहे जितने भी इंश्योरेंस कंपनी के इंश्योरेंस उसने निकाले होंगे, प्रीमियम भरता होगा हर साल गाड़ी का, लेकिन फिर भी वो नींबू मिर्ची का जो इंश्योरेंस है वो जरूरी है, उसके बिना बाकी सारे इंश्योरेंस वो फेल है। देखा आपने नासिक में तो बहुत है नींबू मिर्ची, बहुत जगह लटके रहते हैं। अब ट्रक वाले तो सीधा लिख देते हैं, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, नींबू मिर्ची सब लटका के। अब वो बेचारा जैगवार वाला वो तो लिख नहीं सकता है पीछे, लेकिन नींबू मिर्ची हम छोड़ेंगे नहीं। तो पिछली दफा हमने सुना कि चाहे आप विज्ञान लो, मैथमेटिक्स लो, साइंटिस्ट, वो गॉड पार्टिकल निकला था बीच में, उसको भी नाम उन्होंने गॉड पार्टिकल दिया था, चाहे वो आप एंटरटेनमेंट सिनेमा लो, ये जो मूवीज निकले थे ना पीके और ओएमजी, जिसके अंदर ये सारी चीजों को दक्यानुसी बताया गया था कि ये सारे जो हिंदू रीति रिवाज हैं ये सारे दक्यानुसी। अच्छा आप जानते हैं कि ये होता है ना किसी भी मूवी का मुहूर्त निकलता है, तो बताया गया था, पूरा आर्टिकल था इसके ऊपर कि ये जो पीके मूवी निकली थी जिसके अंदर मजाक उड़ाया गया ये सब कुछ इस चीज का, लेकिन उसका जब मुहूर्त वो लोग निकाल रहे थे तो पूरा होम और यज्ञ और नारियल फोड़कर और अगरबत्ती और ये सब से, तो फिर ये सब है क्या। क्रिकेट आप देखो, क्रिकेट के अंदर कितने यज्ञ होते हैं जब वो, और पता नहीं वो मंत्र कहां से ले आए वो लोग, वो यज्ञ के अंदर मंत्र भी एक एक प्लेयर के नाम से आहुति डाली जाती है, उनके नाम के मंत्र होते हैं, तो कितना भी कोशिश कर लो ये कहीं ना कहीं ये उसके जो ट्रेसेस हैं ये हमारे डीएनए के अंदर है, वो नहीं निकाल पाएंगे, वो चाहे वो आधुनिक तरीके से बाहर आए चाहे वो वैदिक तरीके से बाहर आए। अभी हम लोग सब पहले आधुनिक तरीके से हिंदू धर्म का पालन करते थे, प्रभुपाद की कृपा से अब प्रामाणिक तरीके से पालन करते हैं, नहीं तो पहले जो भी मन में आया लेकिन कुछ ना कुछ हमारे अनुसार हम करते थे, है ना। मंदिर में बहुत बार आप देखे होंगे लोग क्या क्या करते हैं, कान पकड़ते हैं, फिर ऐसे फिर किस भी कर देते हैं भगवान को। बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि भगवान के सामने नमन करना है, झुकना है, वो बड़े हैं हम छोटे हैं। अब इस्कॉन में आने के बाद फिर पता चलता है कि ये सब कुछ छोड़ो, थोड़ा लंबा हो। ओ अच्छा, और वो भी उनको साइड में रखते हुए, पहली दफा इस प्रकार का दंडवत देखा होगा। कि साइड में रखते हैं भगवान, साइड में नहीं रखते, जहां पे अपना हृदय है वो हृदय दे रहे हैं भगवान को। इसलिए बहुत बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भगवान तो उधर हैं, यहाँ पे ये हाथी को क्यों दे रहे हैं। तो इसलिए ये हमारे पिछले संडे की सिटिंग का डिस्कशन था कि अयोध्या में रामचंद्र जी को कभी कैकेयी रिक्त नहीं कर पाए, क्योंकि पूरे अयोध्या वासियों के दिल में प्रभु श्री राम को बसा लिया था उन्होंने। तो आज हम एक और महत्वपूर्ण लेसन लेते हैं। आज हम थोड़ा विजयादशमी के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। रेडी हैं आप लोग? अलग दृष्टिकोण से। तो ये 23वीं शिक्षा कैकेयी से प्राप्त होती है कि कैकेयी क्या सोच रही थी कि राम को बहिष्कृत कर भरत को राजा बना दूं, विन विन सिचुएशन रहेगा। कॉरपोरेट लैंग्वेज में इसको क्या कहते हैं, विन विन सिचुएशन। कि और वो भी 14 साल क्यों चुना वनवास का, ये पर्टिकुलर जो आंकड़ा है 14 साल का, ये क्यों चुना कैकेयी ने कि 14 साल होना चाहिए वनवास? क्योंकि सिद्धांत के अनुसार 14 साल यदि कोई प्रॉपर्टी को क्लेम नहीं करता तो वो प्रॉपर्टी उसकी फिर नहीं हो सकती। इसलिए कैकेयी ने, कैकेयी तो क्या मंथरा, ये सब उसकी करनी थी, तो मंथरा ने ये सारे फिगर्स पहले से सोच रखे थे। और मंथरा का एक बचपन का एक गुस्सा था राम के ऊपर जो मंथरा उतार रही थी। और वो क्या था बचपन में, अब मंथरा हम सब जानते हैं कुबड़ी स्त्री थी, पीछे उसका वो कुबड़ था। तो रामचंद्र जी बचपन में खेल रहे थे और एक गेंद से अपने मित्रों के साथ, भाइयों के साथ खेल रहे थे, और वो गेंद जो है वो गलती से मंथरा के पीछे पीठ पर लगी और बाकी सब हंसे, जितने उधर मित्र इकट्ठा थे वो सब हंसे। तो मंथरा ने ये बचपन का रामचंद्र जी का अनजाने में किया गया अपराध याद रखा कि मैं इस व्यक्ति को छोड़ूंगी नहीं। तो यहां पर कैकेयी क्या करना चाह रही है, ये एक जो नया कॉन्सेप्ट आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, ट्राइंग टू मिक्स ऑयल एंड वॉटर। बिना राम के राम का ऐश्वर्य, ये क्या है कि चाहे हमने देखा भी होगा कि तेल और पानी वो कभी मिक्स नहीं होते, चाहे कितना भी पावरफुल मिक्सर ग्राइंडर आप ले लो, उसके अंदर तेल डालो पानी डालो उस जग में और पूरे दिन भर घुमाते रहो, खोल के देखोगे क्या दिखो, क्या दिखेगा आपको, तेल ऊपर तैर रहा है। तो ये जो कैकेयी का प्रयोजन, हम देखते हैं कि अक्सर इस भौतिक संसार में यही प्रयोजन एक भौतिकतावादी मनुष्य का होता है। अब जब मैं ये मुद्दा प्रिपेयर कर रहा था तो मैंने सोचा कि एक बहुत स्ट्रेंज फैक्ट है, हमको बचपन में भी ये साइंस में बताया गया था, साबुन कैसे बनता है, उसके अंदर एक मेजर कंटेंट क्या होता है, तेल। साबुन के अंदर एक मेजर कंटेंट तेल का होता है और पानी भी इस्तेमाल होता है साबुन बनने के लिए, जो टिकिया होती है साबुन की। और जब हमारे हाथ तेल के होते हैं तो उस तेल के हाथ को साफ करने के लिए आपको साबुन लगाना पड़ता है जो कि तेल से बना है। Isn't it strange? तो इस भौतिक संसार में आप देखो, ये जो एक तरफ है अभक्त और एक तरफ है भगवान के भक्त, तो दोनों अपना जीवन जी रहे हैं। हम भी अनुभव किए पहले कृष्ण भक्ति में आने से पहले हमारा जीवन और अभी का जीवन, और कई बार उसके ट्रेसेस रहते हैं, उस तेल के ट्रेसेस रहते हैं, तो उस तेल को अभी पानी में मिक्स करने की कोशिश करते हम एज अ स्ट्रगलिंग डिवोटी। वो होता नहीं है मिक्स, लेकिन हम पूरी पूरी कोशिश में लगे रहते हैं कि कैसे तो मिक्स हो जाए। श्रील प्रभुपाद ने एक एग्जाम्पल दिया, इफ यू ट्राई टू एंजॉय सेंस ग्रेटिफिकेशन इन द नेम ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, इट इज लाइक मिक्सिंग सैंड इन स्वीट राइस। अब ये एग्जाम्पल हमने सुना होगा, लेकिन अगर इसको आप कल्पना करो, इस एग्जाम्पल को, एक तरफ खीर, और कौन सी खीर, खीर की तुलना किससे की है प्रभुपाद ने, कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो ये कौन सी खीर है, सबसे उत्कृष्ट दर्जे की खीर है, इसके अंदर बासमती चावल है, इसके अंदर शुद्ध गाय का दूध है, इसके अंदर ऐसे ऐसे ड्राई फ्रूट्स हैं और एसेंस है, सब कुछ है। ऐसी खीर कपूर है, उसका फ्लेवर है, और आपको कोई दी, और ठंडी है, और फिर आपको कोई दिया है, और फिर कहता है कि रुकिए प्रभु जी, गार्निशिंग कर दूं इसके ऊपर, लेट मी गार्निश दिस स्वीट राइस, किससे, रेती से। तो रेती उसके अंदर पूरा ऊपर से उसको मिला के अच्छी से अब खाइए। तो आप जब खाते हो तो क्या आपको स्वीट राइस का टेस्ट आएगा? आएगा, आएगा, क्यों नहीं आएगा। लेकिन उसके साथ जब चबाने जाओगे तो जिह्वा पर टेस्ट मीठा कुछ थोड़ा आ रहा है, लेकिन चबाने गए तो चावल के दानों के साथ आपके दांत किसे और चबाएंगे, वो रेती के कण। क्या एक्सपीरियंस है वो। तो कई बार कृष्णा कॉन्शियसनेस में ये मिश्रित करना, जो कई कई ट्राई कर रही थी वो ये। तो इस एग्जाम्पल को मैंने थोड़ा और एक्सटेंड किया, स्वीट राइस और सैंड वाला एग्जाम्पल। अब यहां तक तो ठीक है कि किसी की कंडीशनिंग्स हैं जिसके वजह से वो कई बार साधना भक्ति के नियमों से च्युत हो जाता है, परंतु जब किसी की नियत खराब है, बोलते ना खोटी नियत, जब खोटी नियत के साथ भक्ति करता है तो वो क्या व्यक्ति है कि वो स्वीट राइस बनाने की कोशिश कर रहा है फटे हुए दूध से। ये प्रभुपाद का एग्जाम्पल नहीं है, ये 2017 का एग्जाम्पल है। अब इमेजिन करो कि फटे हुए दूध से स्वीट राइस, मतलब चाहे उसको आप कितने भी अच्छे इंग्रेडिएंट्स डालो, अभी उसके अंदर कितने भी अच्छे बासमती चावल और बाकी सब जो बताया हमने, वो सब कितना भी डालो, बेसिकली अगर दूध ही फटा हुआ है तो क्या बनेगा वो स्वीट राइस। तो यदि भक्ति की नींव अगर हमारी फटी हुई है, उसके अंदर नियति खोटी है, तो फिर उसके अंदर चाहे हम कितने भी मालाएं कर लें और कितना भी अच्छा लंबा तिलक लगा लें और कितना भी एकदम उजला उजला वैष्णव पहनावा पहन लें, किसी काम का नहीं हो। क्यों? दूध ही फटा हुआ है और वो ऐसा है फिर उसके पनीर भी नहीं बन सकता है। तो आप देखो कि एक अभक्त जो है जब वो सक्सेस की परिभाषा क्या होती है हम जानते हैं, लेकिन जब कोई डिवोटी बनने का प्रयास करता है या डिवोटी बनता है तो उसको पूछो तो वो कहेगा आत्म साक्षात्कार। अभी सोचो कि पहले अगर कोई हमको पूछता कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है और आप अगर ये उत्तर देते, इंटरव्यू में कोई पूछता जीवन का लक्ष्य क्या है, आत्म साक्षात्कार, ये वर्ड ही सुनने में नहीं आता लोगों के, कौन सी भाषा बोल रहे भैया, ये कौन सा एम्बिशन है। तो इसलिए यहां पर ये सिद्धांत जो हमने लिया है, मिक्सिंग ऑयल एंड वाटर सैंड एंड स्वीट राइस, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। ये श्लोक का सिद्धांत क्या है कि एक जो भौतिकतावादी मनुष्य होता है, एक जो अभक्त होता है, उसकी जो रात होती है वो एक भक्त की सुबह होती है। अब ये सिंबॉलिक भी है और लिटरल भी है, दोनों भी है, कि जिस दिशा में एक अभक्त भागता है, फूल्स रशिन वेर एंजल्स डेयर टू ट्रेड, ये एक अंग्रेजी की कहावत है कि जहां मूर्ख व्यक्ति भाग रहे हैं जिस सफलता को प्राप्त करने के लिए, भक्त जानते हैं कि उन्होंने इसकी तिलांजलि कब की देजी। अब संपत्ति की परिभाषा क्या है एक अभक्त के लिए, नोट, हीरे जवाहरात, जेवर इत्यादि। एक भक्त को पूछो, शुद्ध भक्त, एक शुद्ध भक्त को पूछो कि भाई एक शुद्ध भक्त की संपत्ति क्या है, राधा मदन गोपाल जी के चेहरे की मुस्कान। जैसे गोपियों को जब पूछा गया कि भगवान को सरदर्द है और आपके चरण की धूली वो मांग रहे हैं, तो गोपियां नित्य काल तक नरकीय जीवन जीने के लिए तैयार थी यदि श्याम सुंदर कृष्ण का सरदर्द ठीक हो जाए, उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाए, वो है उनकी संपत्ति। एजुकेशन, यदि विद्या या शिक्षा, इसके ऊपर भी बहुत लोग गर्व करते हैं कि भाई हमने इतना प्रशिक्षण हासिल किया है, हम ये हैं, PhD है, वो कार्ड के ऊपर, फिर बाद में सर्टिफिकेट भी फ्रेम कर करके दीवारों पे टंगा के रखते हैं कि यदि कोई पूछे नहीं मुझे तो दीवार पे देख लेना मैं कौन हूं, कि ये सब कुछ किया है देख लो भाई, बाद में बात करना, पहले दीवार पे देखो सर्टिफिकेट किसका टंगा है। और एक डिवोटी को पूछो, अभी जैसे भक्ति विनोद ठाकुर ने भजन कह दिया है, विद्यार विलासे कटाइनो काल, कि मुझे इस भौतिक विद्या ने गधा बनाया, गधा। अभी सोचो कि कोई PhD डबल PhD इंजीनियरिंग ये वो सब कुछ करे हुए बैठा है और फिर प्रोग्राम में आया और हम लोग विद्यार विलास से भजन गा रहे हैं, उसको भी दे दिया, ले भाई तू भी गा, कि ये बहुत विद्या ने मुझे ले दे के क्या बनाया, गधा बनाया। फिर अगर हम और एक मुद्दा लें कि यदि इसको सफलता मानी जाती है संसार में, हाँ, कि दिखने में सुंदर होना चाहिए, बाकी चाहे तुम्हारे पास ज्ञान हो या न हो, तुम्हारे पास अकल हो या न हो, शक्ल होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे आप देखो बिलबोर्ड के ऊपर शक्ल अच्छी है, यहां पर कितना माल है पता नहीं। जैसे कि श्रील प्रभुपाद की शिष्या हुई जगत तारिणी माता जी, और ये उस समय की ये बहुत ही फेमस एक्ट्रेस थी, सिनेमा की एक्ट्रेस ऑस्ट्रेलिया की, और फिर डिवोटी बन गई और फिर न्यूज़पेपर में हेडलाइंस के ऊपर इनकी फोटो, बिफोर एंड आफ्टर होता है ना, सो बिफोर एंड आफ्टर की फोटो थी, बिफोर एज अ हॉलीवुड एक्ट्रेस एंड नाउ साड़ी पहनी हुई वो बैकअप कर रही, बर्तन मांझ रही, हरे कृष्णा मंदिर में बर्तन मांझ रही। प्रभुपाद को ये फोटो दिखाई गई, प्रभुपाद ने फोटो, प्रभुपाद ने सबको बुलाया, जस्ट सी, सभी डिवोटीज आके देख रहे हैं और सभी डिवोटीज पहली वाली देख रहे हैं फोटो। प्रभुपाद कौन सी फोटो देख रहे थे, वो डिवोटी बनने के बाद जो मंत्र बर्तन मांझ रही है प्रभुपाद, जस्ट सी हाउ ब्यूटीफुल शी, सब लोग देखने लगे, अच्छा तो प्रभुपाद की ब्यूटी का कॉन्सेप्ट क्या था कि भक्त बनने के बाद देखो ये कितना सुंदर लगती है, पहले देखो कितना बदसूरत लगती थी। अब सब डिवोटीज कंफ्यूज हो गए कि अभी तक ये विजन तो आया नहीं हमारा। फिर लाइफस्टाइल, पहले क्या लाइफस्टाइल था हमारा कि सब कुछ मेरे इर्द गिर्द होना चाहिए, हाँ? कि दिवाली आ रही है तो मेरे लिए कपड़े कौन से, हाँ? सब कुछ मेरे इर्द गिर्द होना चाहिए। जैसे एक डिवोटी बनता है तो तुरंत उसका फोकस कहाँ शिफ्ट हो जाता है, सब कुछ भगवान के लिए। अगर दिवाली भी मनानी है, जो भी कोई त्यौहार मनाना है वो भगवान के लिए, भगवान को क्या भोग चढ़ाएंगे, उनके लिए कौन से नए वस्त्र लाएंगे, उनके लिए क्या क्या ऐश्वर्य हम प्रदान कर देंगे हर समय। एक बेलगाम में हमारे गॉड ब्रदर हैं, बहुत साल पहले मैं जब वहाँ पर गया था बहुत मेरे को इंस्पिरेशनल लगा। उन्होंने अभी बेलगाम के जो अर्च विग्रह हैं उनका नाम है राधा गोकुलानंद, तो उन्होंने एक बिजनेस शुरू किया जिसमें उन्होंने गोकुलानंद भगवान को पार्टनर बनाया ऑफिशियली पेपर पे, जैसे हमारे मदन गोपाल जी है। तो इसने, इस डिवोटी ने गोकुलानंद जी को बिजनेस पार्टनर बनाया और वो उसके कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स ऐसे थे कि इस बिजनेस में जितना प्रॉफिट होगा उसका 50% शेयर करेंगे कौन, वो अपने घर को चलाने के लिए, और 50% गोकुलानंद जी के लिए। और केवल पेपर पे नहीं लिखा, उन्होंने किया भी, वो करते भी थे वो हर महीने। और अगर इस बिजनेस में लॉस हुआ, जितना भी लॉस हुआ, अगर 100% भी लॉस हुआ तो वो सब मेरा। उन्होंने मेरे को दिखाया उनके पूरे बिजनेस के कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स कि गोकुलानंद जी बिजनेस पार्टनर। वो सोच रहे किसको बनाऊं किसको बनाऊं, तो उनको किसी पे विश्वास नहीं आया, ये एक अलग किस्सा है। उनके बहुत से भाई भी थे दो तीन, किसी पे विश्वास नहीं था, एक ही व्यक्ति है गोकुलानंद जी, उनको बिजनेस पार्टनर बना दिया। फिर गोल्स एंड आइडियल्स, आप देखो कि जैसे हमने कि पहले हमको जब पूछा जाता था कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, जैसे गिरिराज महाराज के जीवन की ये कथा है। गिरिराज महाराज वो शिकागो के एक उस समय के करोड़पति घराने के एकलौते बेटे, गिरिराज महाराज एकलौते बेटे, और ब्रह्मचारी बन गए। तो उनके माता पिता वो इतने परेशान कि ये अचानक इसको हुआ क्या, ये कौन है ये हरे कृष्णा लोग कि इसके ऊपर ऐसा जादू कर दिया कि इसने ऐसा ऐश्वर्य सब पूरा हमारा छोड़ दिया, जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी, तो उस प्रकार की स्टोरी है गिरिराज महाराज की। तो इन्होंने उस समय डी प्रोग्रामर को बुलाया, गिरिराज महाराज के पिताजी ने एक डी प्रोग्रामर को बुलाया। डी प्रोग्रामर मतलब कि जो हरे कृष्णा ने प्रोग्रामिंग कर दिया उसको उल्टा करे, उस कैसेट को इरेज करे और फिर जो भौतिकतावादी कैसेट है वो रिकॉर्ड करे उसके ऊपर। इसको बोलते हैं हमारी भाषा में डी प्रोग्रामिंग। तो डी प्रोग्रामर को, और डी प्रोग्रामर वो लोग बहुत चतुर शातिर होते हैं कि किस प्रकार से वो किसी को डी प्रोग्राम करते हैं, जो वहां की भाषा में ब्रेन वॉश्ड है वो जो। तभी गिरिराज महाराज पूरा फिलॉसफी पढ़े हुए, ब्रह्मचारी बने हुए, प्रीचिंग भी कर रहे हैं, डायरेक्टली प्रभुपाद के लेक्चर सुनते थे वो, प्रभुपाद के डायरेक्ट डिसाइपल, डी प्रोग्रामर आती है। अभी एक अकेले वो लोग वो सेशन चालू है तो गिरिराज महाराज को कहती है कि सी यू शुड नो व्हाट इज योर आइडेंटिटी। मतलब वो ये बताना चाह रही थी कि तू कौन से घराने से। तो गिरिराज महाराज, यस जीवेरे स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, आई एम स्पिरिट सोल, दैट इज माय आइडेंटिटी। तो ये डी प्रोग्रामर कंफ्यूज हो गई है सुन के। फिर उसने एक एक ऐसे प्रश्न पूछे, यू शुड थिंक अबाउट योर पेरेंट्स। यस माय ओरिजिनल पेरेंट्स आर राधा एंड श्याम सुंदर, ओरिजिनल पेरेंट्स राधा श्याम सुंदर। व्हाट अबाउट योर फ्यूचर, फ्यूचर गोइंग बैक होम बैक टू गॉड हेड। तो ये सारे जो टर्म्स हैं कि आइडेंटिटी, हम आत्मा हैं, हमारे ओरिजिनल पेरेंट्स ऊपर वहाँ पर खड़े हुए हैं, फिर हमारा फ्यूचर, हमारा एम्बिशन गोइंग बैक होम बैक टू गॉड हेड, नेवर टू टेक बर्थ अगैन, नहीं लेना है मुझे, जन्म ही नहीं लेना है, मुझे किसी गर्भ में नहीं जाना है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इवन यू शुड हैव दैट गोल। वो चिल्लाती हुई बाहर आई कमरे से, गिरिराज महाराज के पिताजी को कहती, मैं अगर और 5 मिनट रहूं ना इस कमरे में, मैं माला लेके हरे कृष्णा करने लग जाऊंगी। तुम्हारा बेटा सबसे बड़ा डी प्रोग्रामर है, मेरे को उल्टा प्रोग्राम कर देगा ये। और फिर उसने रिपोर्ट लिखी, रिपोर्ट में उसने कह दिया, दिस पर्सन इज परमानेंटली इन्फेक्टेड। और फिर प्रभुपाद को जब पता चला, प्रभुपाद इतना खुश हुए। अभी सोचो कि ये एक किसी ने एनालिसिस किया है किसी का, इज परमानेंटली इन्फेक्टेड, और वो भी ये लोग प्रोफेशनल डी प्रोग्रामर्स। तो प्रभुपाद अपने लेक्चर्स में वो पब्लिकली बोलते थे, सो इट हैज बीन नाउ सर्टिफाइड दैट अवर गिरिराज इज परमानेंटली इन्फेक्टेड। और सब लोग जाए गिरिराज, जाए प्रभुपाद। बाहर की दुनिया में कोई इसको जय नहीं करेगा, बोलेगी ये पागल है, ये लोग किसके लिए जय बोलते हैं, ये लोग वन इज परमानेंटली इन्फेक्टेड। तो इसलिए ये जो हमने मुद्दा लिया है कि ट्राइंग टू मिक्स ऑयल एंड वाटर, तो हमको फिलोसॉफिकली समझ में आता है कि कहां पर तेल है कहां पानी है, लेकिन होता क्या है, हमारी कंडीशनिंग, इवन भक्तों के समुदाय में कई तेल होते हैं कई पानी होते हैं, मिक्स नहीं होते वो लोग, चाहे कितना भी कोशिश करो। हाँ उनको बिठाओ, प्रसाद के लिए बुलाओ, बिठाओ कि एक साथ प्रसाद, नहीं हो गया मिक्स। प्रभुपाद के टाइम पे भी ऐसे बहुत से प्रभुपाद के डिसाइपल, प्रभुपाद ने क्या किया, एक तेल है एक पानी है, साबुन बनाया उसका, ताकि दूसरों के जो ऑयली हैंड्स है ये लोग साबुन बन के उसको साफ करें, ये खुद तो मिक्स नहीं होने वाले। प्रभुपाद यूज्ड इवन डिफरेंसेस ऑफ डिवोटीज। तो ये जो मुद्दा है कि ऑयल एंड वाटर, नॉन डिवोटी और डिवोटी, कल हमने विजयादशमी क्या है, राम और रावण। तो प्रभु श्री राम ने बहुत प्रयास किया कि रावण कहीं ना कहीं कभी ना कभी सुधर जाए, बहुत मौके दिए, यहां तक कि जो लास्ट डे युद्ध हो रहा है, युद्ध में एक एक सर राम काट रहे हैं, तो कोई पूछा रामचंद्र जी को कि आप डायरेक्टली इसको खत्म क्यों नहीं करते, तो उन्होंने कहा कि मैं सोच रहा हूं एक एक सर इसका जो गिर रहा है और नया सर आ रहा है, तो मुझे आशा है कि कम से कम वो नया उगा हुआ सर तो राम भक्त बन जाए, लेकिन वो भी नहीं बन रहा था। तो रामचंद्र जी इतने होपफुल थे। तो आज हम विजयादशमी के ऊपर डिस्कस एक अलग तरीके से करना चाहेंगे कि ये जो राम विजय उत्सव है, जहां पर रामचंद्र जी का न केवल पराक्रम, वो सब तो है, रावण को मारा, उन्होंने युद्ध कौशल अपना पराक्रम दिखाया, परंतु वो दिन दशहरे के दिन से पहले जो कुछ रावण के लिए या रावण को खत्म करने के लिए, उसके उद्धार करने के लिए रामचंद्र जी ने किया, वो सब किसका प्रतीक है? नम्रता, रामचंद्र जी की उदारता और उनके आदर्श नेतृत्व, आइडियल लीडरशिप, उसके प्रतीक है। अब देखो, राम अवतार ये एक ऐसा अवतार है कि चाहे कोई कितनी भी खोट रामचंद्र जी में निकालने का प्रयास करे, बहुत हैं आजकल मॉडर्न हिस्टोरियंस और इंडोलॉजिस्ट और मीडिया, वो खोट निकालने का प्रयास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण वो खुलेआम बोलते हैं, निकालो भैया, मैंने तो किया भी है, कोई परवाह नहीं, कर ले क्या करना। रामचंद्र जी कैसे हैं कि उन्होंने अपना जीवन इतना परफेक्शनिस्ट बनाया, जिसको कहते हैं इम्पेकेबल, कि कोई खोट निकालने भी जाता है तो फाइनली वो एंड रिजल्ट उसका क्या होता है कि वो राम भक्त बन के रहता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने प्रभु श्री राम का गुणगान किस प्रकार से किया, हैं वही राम, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के एक पार्षद हुए मुरारी गुप्ता, और एक दिन चैतन्य महाप्रभु, अब देखो चैतन्य महाप्रभु हम उनको किस इमेज से देखते हैं, चैतन्य महाप्रभु एकदम सीरियस सन्यासी, एब्जॉर्ब्ड इन कृष्णा, एक्सटैटिक डिवोटी, है ना। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने भी मुरारी गुप्ता जैसे पार्षदों के साथ थोड़ी सी छेड़खानी की, तो मुरारी गुप्ता को चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, तुम क्या राम 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 करते रहते हो, अरे युग धर्म कृष्ण का नाम है, कृष्ण का नाम लिया करो। कौन बोल रहे हैं? युगावतार चैतन्य महाप्रभु मुरारी गुप्ता को। और चैतन्य महाप्रभु ऐसे नहीं बोले कि मुरारी गुप्ता समझ गए कि ये मेरी टांग खींच रहे हैं आप भी यहां क्या, नहीं, वो सीरियसली लिए मुरारी गुप्ता कि ये मेरे को बोल रहे हैं कृष्ण का नाम लेने के लिए, तो मैं कुछ गलती कर रहा हूं राम का नाम लेकर, तो मुझे कृष्ण का नाम लेना चाहिए। तो वो शुरू किए, भगवान श्री कृष्ण का नाम लेना शुरू किए, महामंत्र का जप शुरू किए, एक दिन दो दिन तीन दिन नहीं हो रहा है उनसे। भगवान श्री कृष्ण वो उनके जहन में आ ही नहीं रहे, उनके माइंड फ्रेम में भगवान कृष्ण फिट ही नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी रामचंद्र जी फिट हैं, जगह ही नहीं है भगवान कृष्ण के लिए। अब मुरारी गुप्ता वो भगवान चैतन्य महाप्रभु के पास जाकर बोले नहीं कि जो भी आपने मुझे किया है, बोलो होमवर्क दिया नहीं होगा मुझसे, उन्होंने डिसाइड किया, खुद से डिसाइड किया कि मैं आत्महत्या कर लूंगा। यदि चैतन्य महाप्रभु के आदेश का पालन मैं नहीं कर पा रहा हूं तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। और चैतन्य महाप्रभु तो अंतर्यामी, वो समझ गए। आप जानते मुरारी गुप्ता, उन्होंने एक अष्टकम लिखा, रामाष्टकम, कभी हम लोग उसको गाएंगे भी, बहुत सुंदर है रामाष्टकम। तो चैतन्य महाप्रभु को जब पता चला कि मुरारी गुप्त अपना शरीर छोड़ना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि मैंने जो आदेश दिया वो आदेश का पालन नहीं कर पा रहे हैं। किस लिए? अभी जैसे हमको अगर चैतन्य महाप्रभु कहे कृष्ण का नाम लो जप करो, हमसे भी नहीं होता है, हमारे नहीं होने का कारण अलग है। लेकिन मुरारी गुप्त उस ग्लानी में कि मैं राम के अलावा किसी का नाम ले ही नहीं पा रहा हूं, मेरी जिह्वा वो राम के अलावा ये उच्चारण ही नहीं कर पा रही किसी और का नाम, इसलिए मैं आत्महत्या कर लूंगा, क्योंकि मैं कैसे अपना मुंह दिखाऊंगा चैतन्य महाप्रभु को। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपनी उंगली से मुरारी गुप्त के माथे पर लिखा रामदास। इनफैक्ट क्या किया उन्होंने, चैतन्य महाप्रभु ने दीक्षा दी, नाम मिलता है ना दीक्षा के समय, डायरेक्टली चैतन्य महाप्रभु ने मुरारी गुप्ता को दीक्षा दी, रामदास उनके माथे पर लिखा, और वो रामाष्टकम को गाते हुए पढ़ते हुए भाव विभोर अवस्था में कहने लगे कि धन्य है वो मालिक जिनको ऐसा सेवक मिला है, और धन्य है वो सेवक जिनको राम जैसे स्वामी मिले। ये फाइनल वर्डिक्ट था चैतन्य महाप्रभु का। क्यों? क्योंकि राम के भक्त ही राम के जैसे आदर्शवान होंगे, कि मैंने प्रण दिया है प्राण जाए पर वचन न जाए। तो यदि हम अब ये राम विजय उत्सव को चैतन्य महाप्रभु की दृष्टिकोण से देखें, तो हमने ये देखा कि प्रभु श्री राम जैसे ही सीता का अपहरण हुआ उसके पश्चात प्रभु श्री राम जो सीता की खोज में लग गए, और रावण के वध में भी, दोनों प्रयोजन था, रावण का वध भी करना है सीता को खोज निकालना है, तो रामचंद्र जी ने किन किन की सहायता ली, जबकि जरूरत नहीं थी उनको, वो तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उनको क्या जरूरत है किसी की सहायता लेने की, क्या जरूरत है वानर सेना की, क्या जरूरत है हनुमान जी की, क्या जरूरत है सेतु बांधने की भी उनके लिए। हाँ? तो उन्होंने जो सहायता ली उन्होंने क्या दर्शाया, जो सिद्धांत चैतन्य महाप्रभु प्रस्तुत किए, संकीर्तन। चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा कि मैं कृष्ण प्रेम का फल लेकर आया हूं, इतने सारे फल मैं लेकर आया हूं, परंतु मैं स्वयं अक्षम हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे पार्षद मेरी सहायता करें मेरे इस मिशन में, कृष्ण प्रेम के फल बांटने के मिशन में। इसलिए अंत में रामचंद्र जी ने राम विजय उत्सव का श्रेय सबको दिया। हम तो यही मानते हैं ना कि राम विजय उत्सव मतलब रामचंद्र जी ने रावण के ऊपर विजय प्राप्त की, रामचंद्र जी ने रावण का संहार किया, परंतु रामचंद्र जी को पूछा जाए तो रामचंद्र जी क्या कहे, नहीं ये मेरे अकेले का श्रेय नहीं था, उन्होंने जटायु, अब जटायु वो तो असफल रहे, हम कितनी बार उसकी चर्चा कर चुके हैं, परंतु रामचंद्र जी ने राम विजय उत्सव का श्रेय जटायु को दिया, संपाति को दिया, जटायु के भाई। रामचंद्र जी ने श्रेय दिया सुग्रीव को, यहां तक कि वाली को, हनुमान जी तो हैं ही, अपने भाइयों को, भरत को भी श्रेय दिया कि भरत यदि अयोध्या को नहीं संभालते मेरी ओर से तो क्या मैं रावण के ऊपर चढ़ाई कर सकता। एक एक वानर को श्रेय दिया, कितने अनगिनत अरबों खरबों वानर थे, रामचंद्र जी एक एक वानर को श्रेय दिए राम विजय उत्सव का। यह है संकीर्तन का सिद्धांत। संकीर्तन अर्थात कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग, जहां पर सबका योगदान है, वो गिलहरी का भी, जिस गिलहरी ने केवल एक एक रेती के कण फेंके सेतु बनाने के लिए, रामचंद्र जी ने उसे भी उतना ही श्रेय दिया जितना हनुमान जी को, जितना जटायु को, जितना सुग्रीव को, जितना जामवंत, जितना अन्य जो भी लक्ष्मण इत्यादि सबको। अब देखिए, एक तरफ है राम जिन्होंने इन सबको श्रेय दिया, और एक तरफ है रावण। रावण ने जो भी उसके रिसोर्सेस थे सबको यूज किया अपनी काम वासना पूरी करने के लिए। कॉन्ट्रास्ट देखो, एग्जाम्पल क्या है, ऑयल एंड वाटर। कॉन्ट्रास्ट देखो, रावण ने मारीच, मारीच बोला मैं तो मर जा, तू मर जा, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे सीता चाहिए, ठीक है। तो रावण, अगर आप रावण की ओर से लिस्ट निकालो तो रावण ने अपने हरेक लंकावासी को, अपने भाइयों को, अपनी पत्नियों को, अपनी बहन को, जितने रिसोर्सेस थे सबको उसने यूज किया अपनी काम वासना पूरा करने के लिए। ये है रावण। और यहां पर है प्रभु श्री राम जिन्होंने राम विजय उत्सव का श्रेय हरेक को दिया, जिन जिन का योगदान था सबको वो श्रेय दिया। इसलिए हमने क्या कहा पिछली स्लाइड में, आदर्श नेतृत्व, आइडियल लीडरशिप। तो यदि हम राम और रावण, इन दोनों के जीवन को एक स्लाइड में देखें, कॉन्ट्रास्ट, ये दोनों के जीवन का कॉन्ट्रास्ट बायोडाटा, दोनों के जीवन का बायोडाटा, रेज्यूमे, रेज्यूमे बोलते ना। तो सबसे पहले रामचंद्र जी, उन्होंने अपने पूरे जीवन में किया क्या, जहां कहीं पर भी वो जाते वो केवल आशीर्वाद आशीर्वाद इकट्ठा करते थे। राम वुड ऑलवेज गैदर ब्लेसिंग्स, और रावण जहां पर भी जाता था शापित होके आता था, कभी किससे शाप मिल गया, कभी किससे शाप मिल गया, उसको और कुछ मिला ही नहीं, शाप ही शाप मिले उसको जीवन में। और रामायण, अगर आप जो विस्तारित रामायण अगर आप पढ़ोगे तो इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है दोनों की। वही समय जब रामचंद्र जी आशीर्वाद इकट्ठा कर रहे थे, उसी समय रावण अपने जीवन में सारे शाप इकट्ठा कर रहा था। एक प्रसंग रामचंद्र जी के जीवन का, जो कि है ना, उनके जीवन के ऐसे ऐसे प्रसंग हैं जो कि दिल को छू जाते हैं, ये एक ऐसा प्रसंग है। राज्याभिषेक रामचंद्र जी का हो गया, रावण के वध के पश्चात अयोध्या लौट चुके हैं भगवान, राज्याभिषेक हो गया है। राज्याभिषेक के पश्चात राजसूय यज्ञ किया उन्होंने, राम और सीता दोनों बैठे हैं राजसूय यज्ञ में। और राजसूय यज्ञ का नियम है कि जितने भी ब्राह्मण ऋषि मुनि इत्यादि, तो उनको दान दिया जाए। तो राम और सीता ने, अभी सोचो 14 वर्ष वनवास भुगत के आए हैं, अयोध्या के नरेश बने हैं, अभी अभी उनका राज्याभिषेक हुआ है, और रामचंद्र जी ने जो भी इकट्ठा ब्राह्मण थे उनको सब कुछ दान में दे दिया, इंक्लूडिंग अयोध्या, अभी अभी जो मिला है सब कुछ दान में दे दिया उनको, पूरी अयोध्या, पूरी अयोध्या का ऐश्वर्य सब कुछ दान में दे दिया। सीता ने भी सब कुछ दान में दे दिया। तो रामायण में बताया गया है कि उस राजसूय यज्ञ के पश्चात राम और सीता वापस वैसे ही हो गए जैसे कि 14 वर्ष जब शुरुआत उनकी हुई थी, उनके शरीर के कपड़ों के अलावा उनके पास उनका कुछ भी नहीं था। इमेजिन। तो ये सारे ब्राह्मण और ऋषि मुनि जो आए हुए थे, इनके आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे कि ये कौन इंसान, कैसा व्यक्ति है ये, कोई लिमिट्स है इसकी, मतलब आइडियल बिहेवियर की कोई लिमिट्स है इस व्यक्ति की। तो उन्होंने सब वापस लौटा दिया, ऐसे उनको अयोध्या का राज्य मिला वापस। और न केवल लौटाया, उसके साथ भर भर के भूरी भूरी उन्होंने प्रशंसा की इन दोनों की, राम और सीता की, और आशीर्वाद ये चाहिए था उनको, इनके आशीर्वाद चाहिए थे। तो ये एक बहुत स्टार्क कॉन्ट्रास्ट राम और रावण में। अच्छा, रामचंद्र जी ने जब विश्वामित्र मुनि की सेवा की तो उस समय रामचंद्र जी को जरूरत नहीं थी जाने की। रामचंद्र जी तो आज के दृष्टिकोण से देखा जाए तो माइनर थे। विश्वामित्र मुनि जब मांगने आए तो वो माइनर थे, और दशरथ ने कहा कि अरे ये तो बच्चे हैं, ये क्या सुरक्षा करेंगे ये बड़े बड़े आप जो बोल रहे हो मारीच स्वभाव इन सब से। अब प्रोजेक्ट किसका था? विश्वामित्र मुनि का। विश्वामित्र मुनि के प्रोजेक्ट में निस्वार्थ भाव से ये लोग निकल पड़े सेवा करने के लिए। हाँ, वो बात अलग है, विश्वामित्र मुनि चाहते थे कि रामचंद्र जी का विवाह सीता से हो। रामचंद्र जी को नहीं पता था, वो तो घुमाते घुमाते विश्वामित्र मुनि मिथिला ले गए उनको, और मिथिला चलो शिव धनुष उठाओ देखो लगा सकते हो क्या तुम प्रत्यंचा, इसकी लगा दी, टूट भी गया। उन्हें नहीं पता था कि सब स्वयंवर वगैरह अरेंज किया हुआ है। सीता वरमाला लेके आती, रामचंद्र ये क्या चल रहा है, अरे मुझे तो गुरुजी ने कहा था खाली प्रत्यंचा चढ़ाओ, और नहीं 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 ऐसा नहीं, ऐसे थोड़ी होगा। फिर बाद में समाचार भिजवाया गया दशरथ महाराज को, वो जब आज्ञा देंगे वहां से तब फिर आगे सोचेंगे हम। तो विश्वामित्र मुनि का सारा प्रयोजन था, परंतु रामचंद्र जी ने, वो निकले थे अयोध्या से निस्वार्थ भाव से। अब दूसरी ओर रावण को लो, रावण, अच्छा सबसे पहले रावण शिवजी के संपर्क में कैसे आया कोई जानता है? कुबेर को लूटने के पश्चात, कुबेर जो कि रावण का सौतेला भाई, रावण निकल रहा था तो रास्ते में उसने देखा कैलाश पर्वत, ऐसा ऐश्वर्य, ये क्या है, ये कौन सी जगह है? तो रावण की मेंटालिटी क्या थी, जो अच्छा दिखे हड़प लो, मेरा होना चाहिए सब कुछ, ये रावण की मेंटालिटी। तो उसने जब कैलाश का ऐश्वर्य देखा, उठाने लगा, ये मैं ले चलता हूं मेरे साथ। मतलब सोचो बेशर्मी इस व्यक्ति की, कि वो अगर मान लो अभी होता तो घूमते फिरते इधर देखता है, किसी का भी गाड़ी देखी घर देखा, ये मेरा होना चाहिए, किसी की बीवी देखी ये मेरी होनी चाहिए, घर मेरा होना चाहिए, सब पूरा कैलाश पर्वत उठा रहा है ले जा रहा है अपने घर पे ले जाएगा। तो पार्वती ने देखा कि हलचल हो रही है, पर्वत ऐसे कैसे हिल रहा है, तो शिवजी को कहा, शिवजी समझ गए, उन्होंने अपना पैर का अंगूठा लगाया, दब गया नीचे, ये क्या हो, ये कौन है, ये किसने किया? जब पता चला कि ये शिवजी, ये इतने शक्तिशाली हैं, चलो बहुत रिसोर्सफुल लगते हैं, तो उसकी मेंटालिटी क्या थी कि क्या इनसे लूं। जैसे वाली को भी परास्त करने के लिए रावण निकला था, हमने ये स्टोरी डिस्कस करी थी, तो वाली बहुत शक्तिशाली था, काख में दबा के वाली अपना गायत्री कर रहा है, रामेश्वरम जगन्नाथपुरी यहाँ वहाँ बद्रीनाथ जाके। ये रावण ने देखा, बाप रे ये तो बहुत शक्तिशाली है, इसके साथ तो सुलह करनी चाहिए। तो उसकी क्या, जैसे दुर्योधन, दुर्योधन को कर्ण से कोई प्रेम नहीं था कि यही एक है जो अर्जुन को परास्त कर पाएगा, बस मेरे को मेरा एजेंडा पूरा करना है, तो वैसे इसकी भक्ति थी। इसलिए कई बार लोग बोलते हैं ना कि रावण का गुणगान करते, एक ऐसे पता नहीं ऐसे विचित्र सिद्धांत वाले अपने आप को धार्मिक भी बोलते हैं, वो कहते हैं कि रावण को जो जलाया ये सबसे बड़ा पाप करते हैं विजयदशमी के दिन, और उनके अनुसार उनके अगले तीर्थंकर वो रावण होने वाले हैं, और वो गुणगान करते हैं कि रावण की भक्ति ऐसी थी, प्रभु भक्ति ऐसी थी रावण की, कि एक बार रावण बहुत वीणा बजाता था, मैस्ट्रो था वीणा, विशारद था वीणा बजाने में, तो एक बार रावण वीणा बजा रहा था, मंदोदरी नाच रही थी शिवजी के लिए, वीणा बजा रहा है तो वीणा का तार टूट गया, बजाते बजाते वीणा का तार टूट गया, तो रावण ने देखा वीणा का तार टूट गया लेकिन राग टूटनी नहीं चाहिए, तो उसने अपनी एक नस निकाल ली शरीर से, अपने शरीर से नस निकाल ली और तार के रूप में बांध दिया और बजा रहा है, ये है उसकी भक्ति। वाह रे वाह, खैर उसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे ज्यादा। वो एक सीरियल भी निकला था ना, रावण की शक्ति देखी भक्ति नहीं देखी। और कई लोग तो बोलते हैं कि रावण वो इतना सेल्फ कंट्रोल था कि सीता को छुआ तक नहीं उसने, तो लाया क्यों था फिर, क्या लक्ष्मी पूजा करने के लिए लाया था क्या? वो नहीं देखते कि यहां से अगवा करके किसी की पत्नी को ले गया, मतलब ये उसी प्रकार से है कि कोई किसी की पत्नी को अगवा करके ले जाए, कहीं उसको किसी ऐसी हवेली में बंद करके रखे और फिर मीडिया गुणगान कर रही है, कितना बड़ा संत है, टच भी नहीं किया उसको, वाह रे वाह कितना बड़ा संत है। अब वो स्टोरी पता नहीं कि क्यों नहीं कर रहा था वो टच, उसके मंत्रिमंडल ने बोल दिया ये तुम इतना क्यों, तुम इतने बड़े पराक्रमी दशमुखी रावण हो, बलात्कार कर लो सीता का, देखो ऐसे तो मंत्री थे उसके, ऐसी मंत्रणा देते थे, बलात्कार कर लो उसका। और ये पूरा रिकॉर्डेड है रामायण के अंदर, ये लोग पढ़ते भी होंगे लेकिन इसको नहीं सुनाएंगे। तो जब इसको ये सलाह दी गई, इसके सलाहकारों ने ये सलाह दी कि बलात्कार क्यों नहीं कर लेते सीता का, रावण बोलता है वो तो मैं कर लूं, कब का कर लूं, लेकिन मुझे ये श्राप मिला है कि मैं जैसे ही जोर जबरदस्ती से करूंगा किसी स्त्री के ऊपर मैं खत्म हो जाऊंगा, मन तो बहुत कर रहा है। और इसको ये लोग बोलते हैं कि देखो कितना आत्मसंयमी था ये। अच्छा, रामचंद्र जी का भ्रातृ प्रेम देखो, कि रामचंद्र जी जब पूरा 14 वर्ष वनवास हो गया, अब लौट रहे हैं नंदीग्राम में, सबसे पहले भरत प्रतीक्षा कर रहे हैं, और भरत ने कहा था कि एक मिनट भी अगर आप लेट हुए तो मैं अग्नि में अपने आप को दहन कर दूंगा। तो रामचंद्र जी हनुमान जी को भेजते नंदीग्राम, बोलते हैं जाकर समाचार देना मैं लौट रहा हूं, लेकिन उससे ज्यादा जैसे ही समाचार तुम दो भरत की आंखों में देखना, अगर उसकी आंखों में उसके फेशियल एक्सप्रेशन से लगे कि भरत मेरे आने से नाखुश है, यू टर्न लेके रूट चेंज, अयोध्या नहीं लाना है मुझे। देखो क्या क्या स्टैंडर्ड है। और दूसरी तरफ ये रावण, रावण कुंभकर्ण को बीच में उठाता है, बोले अरे कुंभकर्ण को बीच में उठाना मतलब अपनी मृत्यु बुलाना है, तुम लोग जब मर जाओ कुंभकर्ण की नींद से मेरे को कोई मतलब नहीं है, मुझे मेरी विजय से मतलब है, मुझे मेरी विक्ट्री से मतलब है, चाहे वो कुंभकर्ण हो, विभीषण हो, चाहे वो मारीच हो, जैसे कुबेर, अभी कुबेर की लंका थी, पुष्पक विमान किसका था? कुबेर का था, लेकिन रावण की मां कौन? कैकसी। तो रावण की मां ने रावण को कहा, अरे तू निठल्ला किसी काम का नहीं, देख वो मंदाकिनी जो कि उसकी सौतन थी, उसका बेटा ना कुबेर, देख उसका ऐश्वर्य, तूने किया क्या, तूने अपने जीवन में किया क्या, तू तू नाकारा, ये लूजर रावण। तो कुबेर की लंका लूट ली, पुष्पक विमान लूट लिया, ये तो उसका भाई का प्रेम था। तो उससे उसको एक ही चीज से लेना देना था, बस मेरे ऐश्वर्य, मेरे इंद्रिय भोग के लिए जिसको भी मैं इस्तेमाल करूं। अब देखो, भगवान ने वानर सेना, युद्ध जब चल रहा था तो एक एक वानर को भगवान ने, कोई मूर्छित हो जाता या कोई अपने प्राण छोड़ देता तो भगवान स्वयं अंतिम संस्कार करते उस वानर का। और रावण क्या कर रहा था, ये जो यूज एंड थ्रो की मेंटालिटी रावण से शुरू हुई कि जो भी उसकी सेना में मरता उसको समंदर में फेंकते जाओ, फेंकते जाओ, फेंकते जाओ। तो उसको पूछा गया, क्यों समंदर में क्यों फेंके? ताकि बाकी को दिखे नहीं कि कितने मर गए। अरे लेकिन उनका अंतिम संस्कार कोई मतलब नहीं मुझे, उनका काम जो होना था हो गया, उसके बाद उनसे मुझे कोई लेना देना नहीं, उनके परिवार वालों से कोई लेना देना नहीं। ये रावण की मेंटालिटी, यूज एंड थ्रो। रामचंद्र जी ने अपने जीवन में सबको केवल अपना आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद लिया और आशीर्वाद दिया। और रावण क्या किया करता था? रावण केवल घूस खिलाया करता था बस। उसने लंका में, क्यों लंका वासियों को अपना बनाकर रखा था? क्योंकि लंका वासियों को जो इंद्रिय भोग चाहिए, जितना मांस खाना है, जितनी दारू चाहिए, जितना शराब, जितना अवैध संग, सब कुछ प्रदान करके देता था। इस प्रकार से उनको खुश रखता था। ये तरीका था रावण के राज्य में सबको खुश रखने का। और फाइनली सबसे बड़ा डिफरेंस दोनों में, रामचंद्र जी जो थे एक पत्नी व्रत वाले, मर्यादा पुरुषोत्तम, और इसका ठीक विपरीत रावण, जिसको हमने क्या कहा है, ओरिजिनल रेपिस्ट। बाकी जितने हैं अभी कलयुग में आने भी वाले जितने भी, वो सब के फाउंडर आचार्य रावण। रामचंद्र जी अयोध्या में, जब सीता वाल्मीकि मुनि के आश्रम में रह रही थी, तो रामायण में बताया गया है कि रामचंद्र जी अक्सर सीता को याद किए अकेले रोते रहते थे, रोते रहते थे, रोते रहते थे। शरद ऋतु में रामचंद्र जी सीता को इतना याद करते थे, और जो जो समय सीता के साथ उन्होंने बिताया उसको याद कर कर अक्सर लक्ष्मण वो देखते थे, रामचंद्र जी कहीं दिखाई नहीं देते थे, तो लक्ष्मण ढूंढते हुए जाते थे कि राम है कहां अयोध्या में, और लक्ष्मण वो स्पॉट करते थे रामचंद्र जी कहीं अकेले बैठे सीता के वियोग में रो रहे हैं, सीता को याद करते। इसलिए रामायण में रामचंद्र जी के विषय में कहा गया है कि उनका व्रत क्या था, वन वाइफ वन एरो वन वर्ड, ये उनका व्रत था। रामचंद्र जी के तुणीर में केवल एक ही बाण रहता था, वो एक ही बाण इस्तेमाल करते थे मारने के लिए, हाँ उसके बाद फिर दूसरा आता था, लेकिन उनके तुणीर में केवल एक बाण होता था। ही वॉज फेमस फॉर हैविंग वन एरो वन वाइफ। अब देखो, ये एक बहुत ही सुंदर प्रसंग है। हनुमान जी जब सीता से पहली दफा अशोक वाटिका में मिलते हैं, तो हम सब सुंदरकांड का ये प्रसंग जानते हैं। अब हनुमान जी ने सीता को पहले देखा नहीं है, हनुमान जी जानते नहीं कि सीता दिखती कैसी है, सीता जानती नहीं कि हनुमान कौन है, क्यों भेजे गए हैं। तो जब हनुमान जी को यह आशंका होती है कि ये सीता लगती है, इस पूरी अशोक वाटिक पूरी लंका में यदि कोई सती लग रही है दिखने में, सुंदरता में, हर दृष्टिकोण से जिसका सतीत्व दिख रहा है, तो वो है ये। तो हनुमान जी अपना परिचय, अब देखो रावण बहुत बार भेष बदल कर आया था, सीता जानती थी कि ये भेष बदल कर आता है, कभी राम का भेष लेकर आता है, कभी किसका भेष लेकर आता है। तो हनुमान जी रामचंद्र जी का जब गुणगान करना प्रारंभ करते हैं और ऐसे गुणों का बखान करते हैं जो केवल सीता जानती थी, बहुत पर्सनल क्वालिटीज को ग्लोरीफाई करते हैं हनुमान जी, जो और कोई नहीं जानता, केवल सीता जानती थी। तो सीता ने जब रामचंद्र जी का गुणगान सुना हनुमान जी के मुख से, तो सीता इस निष्कर्ष पर आई कि ये रावण का आदमी हो ही नहीं सकता, ये रावण तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि रावण कभी ऐसा गुणगान नहीं कर सकता राम का, चाहे वो कितना भी भेष बदल ले, परंतु राम का गुणगान मेरे दिल तक ये बात पहुंच रही है, ये केवल कोई शुद्ध भक्ति हो सकता है राम का। इससे हम क्या सीखते हैं? हम भी राम का गुणगान करने जब जाते हैं खोई हुई सीता को वापस लाने के लिए, तो लोगों को पता चलता है कि ये असली गुणगान है या नकली या जाली है, जैसे सीता को पता चल गया, क्योंकि वो उनके हृदय तक वो गुणगान पहुंचा, क्योंकि हनुमान जी अपने पूरे हृदय से रामचंद्र जी का गुणगान कर रहे थे। तो एज अ प्रचारक हनुमान जी के पदचिन्हों पर चलते हुए जब तक हम हृदय से रामचंद्र जी का गुणगान नहीं करेंगे, लोग पहचान जाएंगे कि इसमें असली कौन है और जाली कौन है, व्हाट इज रियल करेंसी एंड व्हाट इज काउंटरफिट करेंसी। तो अब सीता वो तो मान गई कि ये बोनाफाइड मैसेंजर है हनुमान, लेकिन ये सीता ये बोनाफाइड है कि नहीं, हनुमान जी को ये भी तो एश्योर करना था। वो थोड़े दुविधा में थे कि क्या ये सच में वही सीता है या कोई राक्षसी ने भेष बदल लिया है। तो हनुमान जी अभी डाउट में थे, क्योंकि अभी सीता का मैसेज भी लेकर जाना है ना। तो आप जानते हैं सीता ने हनुमान जी को कैसे कन्विंस किया, हनुमान जी ने सीता को कन्विंस किया शुद्ध राम कथा कर। परंतु आप जानते हैं कि सीता ने हनुमान जी को कैसे कन्विंस किया? सबसे पहले चूड़ामणि दिया, जो कि बहुत ही पर्सनल ज्वेलरी सीता देवी की, वो हनुमान जी को दिया कि ये राम को दिखाना। और एक पास्ट टाइम, एक इंसिडेंट सीता ने हनुमान जी को सुनाया जो केवल राम और सीता ही जानते थे, लक्ष्मण भी नहीं जानते थे, पूरे जहान में और कोई नहीं जानता था इस इंसिडेंट को। और ये इंसिडेंट तीसरे व्यक्ति अब हनुमान जी उनको बताया सीता ने। और ये कौन सा इंसिडेंट? ये चित्रकूट में हुआ था। चित्रकूट में लक्ष्मण लकड़ी लेने के लिए गए हुए थे और रामचंद्र जी, बहुत कम आप सुनने में ये आएगा, रामचंद्र जी सीता के गोद में अपना सर रखे हुए आराम कर रहे थे। बहुत कम राम और सीता की माधुर्य लीला का वर्णन है। तो यहां पर सीता, सोचो, ये इंटीमेट पास्ट टाइम हनुमान जी को सुना रही है, उन दोनों का एक बहुत इंटीमेट पास्ट टाइम, हनुमान जी जो कि एक ब्रह्मचारी है। तो आप कल्पना कीजिए कि नीड ऑफ द आर क्या है, नीड ऑफ द आर क्या है कि हनुमान जी कन्विंस होने चाहिए कि ओरिजिनल सीता है, रामचंद्र जी जब ये सुनेंगे ये पास्ट टाइम तो समझ जाएंगे कि ये पास्ट टाइम सीता के अलावा और कोई जानता भी नहीं था। तो रामचंद्र जी सीता के गोद में सर रखे हुए हैं और इंद्र का पुत्र जयंत कौवे का रूप लेता है। रामचंद्र जी की आंखें बंद है, सीता वो इतनी प्रसन्न है कि उनके स्वामी उनकी गोद में इतने आराम से लेटे हुए हैं। और ये इंद्र का पुत्र, मतलब जिसको कहते हैं ना कि इंग्लिश में एक वर्ड है वैंडलिज्म, बिना मतलब मस्ती करना, तो ये चोंच मारने लगा सीता को, और वो भी सीता देवी के छाती पर चोंच मारने लगा। तो सीता देवी के छाती से रक्त निकलने लगा, ये चोंच मार रहा है, रक्त निकलने लगा, और वो उसको रोक नहीं रही है। क्यों? क्योंकि अगर वो हिलेगी तो रामचंद्र जी की नींद खुल जाएगी, तो अपने राम स्वामी की नींद ना खुल जाए इसलिए सीता उसको सहन कर रही थी। परंतु जब वो रक्त रामचंद्र जी के आंखों पर गिरा, रक्त की बूंदे, रामचंद्र जी जग गए और जग के देखते हैं कि रक्त निकल रहा है सीता की छाती से, किसने किया ये? सीता बता नहीं रही थी, बता नहीं रही थी किसने किया। रामचंद्र जी जान गए, उस कौवे को देखा। अब आप जानते हैं उस एक कौवे को मारने के लिए रामचंद्र जी ने क्या किया, घास तोड़ा, घास का एक तिनका तोड़ा और अपने हथेली पर मंत्र उच्चारण कर उसको ब्रह्मास्त्र बनाया, एक कौवे को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र, और उस ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। अब ये कौवा है कौन? इंद्र का पुत्र, और क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ये भाग रहा है, भाग रहा है, जैसे कि वो दुर्वास मुनि की स्टोरी में दुर्वास मुनि भाग रहे थे ना सुदर्शन पीछे, तो ब्रह्मास्त्र पीछे ये जयंत भाग रहा है, कौवे काव 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 करते हुए भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, साधारण कौवा थोड़ी है, भाग रहा है, भाग रहा है। इंद्र सबसे पहले अपने पिताजी के पास जाता, पिताजी पिताजी पापा पापा बचाओ। पिताजी देखते हैं भैया मुझे दूर रख, पिताजी भी कम नहीं है। पिताजी बोले मैं नहीं जानता भैया, तू 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 देख, तूने जो गड़बड़ की है तू संभाल, मैं ऑलरेडी मेरे बहुत से केस चल रहे हैं कोर्ट में बहुत से केस पेंडिंग है मेरे, तू तू अपना केस संभाल। तो ये भागते हुए फिर फाइनली ये जयंत, इसको कहां जगह मिलती है शरणागत, अपनी शरणागति दिखाने के लिए? सीता देवी, सीता देवी के पास। तो सीता देवी फिर अपने चरणों से रामचंद्र जी के चरणों में डाल देती है इसको, और तब जाकर सीता देवी याचना करती है कि इसे क्षमा कर दो, मैं बोल रही हूं इसे क्षमा कर दो। तो रामचंद्र जी सीता देवी के बोलने पर इसको क्षमा करते हैं, परंतु कहते हैं ब्रह्मास्त्र का नियम है कि यह ब्रह्मास्त्र बिना अपने टारगेट को विध्वंस किए तो वापस आता नहीं, तो कुछ ना कुछ तो ये गड़बड़ करके आएगा अभी। तो फिर उसकी एक आंख फोड़ कर आ जाता है ब्रह्मास्त्र, इसलिए कौओं की एक ही आंख होती है। अभी तक सारे कौवे जो हैं वो जयंत की देन से एक ही आंख वाले होते हैं, ऐसा बोला जाता है कि कौवे की एक ही आंख काम करती है। तो सीता ने ये इंसिडेंट हनुमान जी को सुनाया, इसके पीछे एक बहुत इंटरनल रीजन है। सीता ये बता रही है, ये इंडिकेट कर रही है कि वो एक कौवा था और उसने केवल मुझे चोंच मारी थी और आपने ब्रह्मास्त्र निकाल दिया था उसको मारने के लिए, इस रावण के लिए क्या करने वाले हो? ये हिडन मैसेज था जो हनुमान जी के द्वारा सीता कन्वे करना चाहती थी कि उनको याद आए, उनको ही याद आए, क्योंकि वही जानते हैं और कोई नहीं जानता इस इंसिडेंट को। तब फिर हनुमान जी वो कन्विंस हुए। तो ये इंसिडेंट जहां पर एक पत्नी व्रत, और अगर हम वन वर्ड उनका वचन, उन्होंने जो वचन दे दिया वो वचन पत्थर की लकीर हो जाती है। अब देखो एक और एक ये इंसिडेंट प्रभु श्री राम के जीवन का, ये एक और ऐसा जिसको कहते हैं ना कि हार्ट रेंचिंग, ऐसे विदीर्ण कर देता है हृदय को, न केवल द्रवित बल्कि हृदय को विदीर्ण करने वाला इंसिडेंट है। जैसे कि लोग कहते हैं ना कि रामचंद्र जी ने सीता को निष्कासित किया, बैनिश्ड सीता। आपको पता है रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को भी बैनिश किया था। बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है ये कि जब रामचंद्र जी अयोध्या में थे और उनका पूरा साम्राज्य अच्छा चल रहा था, अब समय आ गया था कि रामचंद्र जी को पुनः अपने धाम वैकुंठ लौटना है, तो मूर्तिमान मृत्यु एक ऋषि मुनि का रूप लेकर आता है रामचंद्र जी से वार्ता करने के लिए, और रामचंद्र जी से प्रण लेता है ये कि मुझे कोई बहुत जरूरी बात आपसे डिस्कस करनी है एकांत में, लेकिन आप राजा हो, बहुत से आपके आप ऑन कॉल रहते हो, राजा हो तो आपके हर समय कोई ना कोई डिस्टर्बेंस होते रहेंगे, कोई ये इशू लेकर आएगा, कोई वो इशू लेकर आएगा, कोई ये मंत्री आ गया, कोई ये संतरी आ गया, कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। तो सोचो ऐसे ही रास्ते चलता कोई मुनि, रामचंद्र जी वचन क्या देते हैं, कोई हमारी वार्ता में डिस्टर्बेंस लाएगा, इंटरप्शन लाएगा, मैं उसे जान से मार डालूंगा। सोचो अब उस जमाने के ये ऐसे वचन वो पूरा करते थे, तो ये वचन दे दिया इसे, ये है कौन, मूर्तिमान मृत्यु। तो एकांत में बैठे हैं उसी समय, गेस हु, दुर्वास मुनि लक्ष्मण को सामने रखा पहरेदार के रूप में कि कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, रामचंद्र जी ने कह दिया क्योंकि मैंने ये प्रण ले लिया है, जो भी मुझे डिस्टर्ब करेगा मैं पर्सनली मार डालूंगा उसको, और वचन मैंने इस साधु को दे दिया। उसी समय दुर्वास मुनि, तो लक्ष्मण जी दुर्वास मुनि को दंडवत करते हैं, कैसे आना हुआ, दुर्वास मुनि मुझे रामचंद्र जी से मिलना है अभी इसी वक्त। लक्ष्मण जी ने कहा देखो मीटिंग चल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, आप जो बोलो मुझे बोलो, मैं आपको उपलब्ध करा के दे दूंगा, मुझे राम समझो। नहीं, रामचंद्र जी से अभी मिलना है इसी वक्त, नहीं तो मैं पूरे रघुकुल को शाप दे दूंगा, तुम्हें दे दूंगा, रामचंद्र जी को दे दूंगा, पूरे परिवार को शाप दे दूंगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो लक्ष्मण ने सोचा कि ये दुर्वास मुनि हैं, इनके शाप वो भी काम करते हैं, ये शाप दे देंगे पूरे रघुकुल को, इससे अच्छा मैं अकेला ही मर जाऊं। तो दुर्वास मुनि को कहते हैं ठीक है मैं बुलाकर लाता हूं। उनको पता था लक्ष्मण को, रामचंद्र जी ने क्या प्रण लिया है, गए बोले कि दुर्वास मुनि अभी तुरंत आपसे मिलना चाहते। रामचंद्र जी ने लक्ष्मण की ओर देखा, लेकिन अभी सबसे पहले दुर्वास मुनि आए, उनसे मिलना है, तो गए दुर्वास मुनि के पास, दंडवत किया, मुनिवर क्या सेवा आपकी करें, गेस व्हाट, भूख लगी है। दुर्वास मुनि क्या बोलते हैं, मुझे भूख लगी है, मेरे शिष्य भी हैं, पता नहीं उनकी भूख कभी कम होती नहीं है, जहां जाओ भूखी लगी रहती है। तो सोचो अभी क्या लक्ष्मण उनको ना प्रसाद नहीं खिला सकते थे क्या, नहीं, राम के हाथ से खाने का है मेरे को। तो रामचंद्र जी स्वयं अपने हाथों से परोसते हैं, उनके सारे शिष्यों को परोसते हैं। दुर्वास मुनि संतुष्ट हो जाते हैं, खुश होकर आशीर्वाद देकर निकल पड़े। वो निकल गए। अब रामचंद्र जी जब लौटते हैं तो लक्ष्मण की आंखों में आंख नहीं डाल पा रहे, क्योंकि अब सब जानते हैं कि रामचंद्र जी को कौन सा वचन निभाना है, कौन सा धर्म निभाना है। उनकी गर्दन नीचे, लक्ष्मण से आंख नहीं मिला पा रहे। लक्ष्मण तलवार लेकर आते हैं, रामचंद्र जी को हाथ में देते हैं कि ये लो तलवार, जो प्रण आपने लिया है मेरे लिए इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है कि आपके हाथों मेरी मृत्यु हो। रामचंद्र जी के हाथ से, रामचंद्र जी के पहली दफा हाथ कांपने लगे। मैं अपने हाथों से अपने प्रिय लक्ष्मण की हत्या करूं, और वो भी किसके लिए? तो अपने मंत्रिमंडल को बुलाते हैं और रोने लगते हैं, फूट फूट कर रो रहे हैं अपने मंत्रियों के सामने, विद्वत सभा के सामने फूट फूट कर रो रहे हैं कि मैं क्या करूं। तभी वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि आप रघुकुल के हैं, और रघुकुल की जो रीत है कि जो वचन आपने लिया है उसको आपको पूरा करना ही पड़ेगा। अर्थात जिसने आपकी वार्ता में बाधा लाई उसे आपको मारना ही पड़ेगा, चाहे वो लक्ष्मण आपका भाई क्यों ना हो। तभी रामचंद्र जी वशिष्ठ मुनि की ओर देख रहे हैं कि क्या आप सच में मुझे ये आदेश दे रहे हैं। वशिष्ठ कहते हैं हां, परंतु लक्ष्मण जैसे क्षत्रिय के लिए अनादर मृत्यु से भी ज्यादा भयावह है, तो इसलिए लक्ष्मण को अयोध्या से बहिष्कृत करो। ये जो अनादर लक्ष्मण का होगा, डिसऑनर इज वर्स देन डेथ फॉर अ क्षत्रिय लाइक लक्ष्मण। तो ये प्रसंग है जहां पर रामचंद्र जी को सीता के पश्चात लक्ष्मण को भी बहिष्कृत करना पड़ा अपने वचन को निभाने के लिए। इसलिए रामचंद्र जी को क्या कहा गया है, ही वॉज द मैन विथ वन वाइफ, विथ वन एरो एंड विथ वन वर्ड। सत्स्वरूप महाराज ने प्रभुपाद को एक बार एक लेटर में पूछा कि भगवान के जो अवतार हैं, विशेष रूप से राम और कृष्ण, इन अवतारों को कैसे समझा जाए। तो प्रभुपाद ने बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से रिप्लाई किया। प्रभुपाद ने रिप्लाई में लिखा सत्स्वरूप महाराज को कि देखो, राम और कृष्ण के पिताजी, उनके जीवन को देखो। भगवान श्री कृष्ण के पिताजी वसुदेव, वसुदेव जी ने कंस को क्या प्रण दिया था कि जो भी शिशु पैदा होगा मैं लाकर दूंगा। तो हां, बाकी के जो छह कंस मार दिए, लेकिन जब आठवां पुत्र कृष्ण पैदा हुए, क्या वसुदेव जी ने अपना वचन पूरा किया? नहीं। प्रभुपाद लिखते हैं सत्स्वरूप महाराज को, वसुदेव ने अपना वचन पूरा नहीं किया जो कंस को दिया था, वसुदेव जी ने वचन तोड़ा। दशरथ ने वचन दिया था कैकेयी को, क्या दशरथ ने अपना वचन तोड़ा? राम को निकाल दिया लेकिन अपना वचन नहीं तोड़ा। वसुदेव ने कृष्ण को बचाने के लिए अपना वचन तोड़ दिया, दशरथ ने वचन पूरा करने के लिए राम को बहिष्कृत कर दिया या करवा दिया। तो प्रभुपाद लिखते हैं, दिस प्रूव्स कि दोनों के बेटे कैसे होंगे। दिस प्रूव्स कि दोनों के बेटे कैसे होंगे। कि भगवान श्री कृष्ण वो आगे चल के उन्होंने कैसा उदाहरण स्थापित किया कि यदि मध्य रात्रि में अन्यों की स्त्रियां शुद्ध भक्ति से मेरे साथ नाचना चाहती हैं, आए, मैं नाचूंगा, मैं उनके साथ नाचूंगा, मैंने एक पत्नी व्रत नहीं लिया है। और तुमको अगर प्रॉब्लम है, तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुम झेलो। भगवान कृष्ण सुप्रीम ऑटोक्रैट, प्रभुपाद बोलते थे, ही इज अ सुप्रीम ऑटोक्रैट, ही कैन डू एनीथिंग ही वांट्स। तो प्रभुपाद सत्यरूप महाराज को लिखे कि हमको भगवान श्री कृष्ण को उनके नेचर के अनुसार वर्शिप करना है। उन्होंने अपना उस अवतार में क्या किस तरीके से प्रेजेंट किया कि चाहे मैंने प्रण लिया है कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, अर्जुन के लिए मैं कुछ भी करूंगा, सारे प्रण मेरे गए, मैं चेंज करूंगा, मेरे ही प्रण मैं चेंज करूंगा, मेरी मर्जी, ये कृष्ण। और रामचंद्र जी उनका जो अवतार, तो प्रभुपाद कहे कि उनके नेचर के अनुसार हमको उनकी वर्शिप करनी है। तो रामचंद्र जी ने क्या कहा, जब रामचंद्र जी को पूछा गया कि आपका परिचय क्या है, तो रामचंद्र जी रामायण में कहते हैं, आत्मानम मानुषम मन्ये रामम दशरथ आत्मजम। मेरा परिचय, मैं एक मनुष्य हूं, मैं अपने आप को एक मनुष्य मानता हूं। रामचंद्र जी अपना परिचय क्या दे रहे हैं, आत्मानम मानुषम मन्ये, मैं अपने आप को एक मानुष मानता हूं, केवल इतना ही है कि मैं दशरथ का आत्मज हूं, बस, रामम दशरथ आत्मजम। वो कहते हैं, हमें नहीं मानना है उनको ऐसा। तो प्रभुपाद लिखे कि ये रामचंद्र जी का मूड है, क्या, वन वाइफ वन वर्ड वन एरो। भगवान कृष्ण का मूड बिल्कुल विपरीत है इसका, हमको उनके मूड के अनुसार उनका वर्शिप करना है। दिस इज द प्रॉपर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग वेरियस इनकार्नेशंस। तो अगर हम फाइनली, जैसे हमने कहा, राम विजय उत्सव की तुलना हमने किसे की, संकीर्तन से, अब इस्कॉन की तुलना अगर राम विजय उत्सव से करें, तो ये एक मैथमेटिकल लॉजिकल कैलकुलेशन है, ए इक्वल्स बी एंड बी इक्वल सी, देन ए इक्वल्स सी। तो अगर राम विजय उत्सव संकीर्तन है और इस्कॉन अगर राम विजय उत्सव है, तो इस्कॉन क्या हो गया, राम विजय उत्सव प्लस संकीर्तन। संकीर्तन तो है ही, हम बोलते हैं ना। तो इसमें अगर हम देखें, तो जैसे राम विजय उत्सव में राम सेतु बना, समंदर पार हुआ, वैसे हमारे श्रील प्रभुपाद ने भी समंदर पार किया। जैसे प्रभु श्री राम ने वानर सेना इकट्ठी की, अब देखो क्या जरूरत थी, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन आपने देखा कि राम के दूत छलांग लगाकर गए हनुमान जी, रामचंद्र जी को सेतु बनाना पड़ा। कि उनके मैसेंजर छलांग लगा के जा सकते हैं, तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नहीं जा सकते थे क्या, लेकिन उन्होंने संकीर्तन क्या, सबको, सब वानर, सब लोग का कंट्रीब्यूशन है, ये पत्थर मैंने लगाया, ये वाला मैंने लगाया, ये वाला मैंने लगाया, मेरा कंट्रीब्यूशन, तो सबको श्रेय दिया। जैसे प्रभुपाद ने सारे हिप्पियों को लगाया, सबको श्रेय दिया, ऐसे ऐसे हिप्पी जो कभी नहाते तक नहीं थे, उनको डीटी वर्शिप दे दिया। प्रहलाद नंदन महाराज बताते थे, उनको पता भी नहीं था डीटी वर्शिप क्या होता है। वहां पर टेंपल प्रेसिडेंट ने बोल दिया कि मैं प्रभुपाद के साथ जा रहा हूं, प्रभुपाद ने बोला है डीटी वर्शिप चालू करना है, ये लिस्ट है, ऐसी आरती करते हैं, एक एक आइटम्स बता दिया। तो महाराज, उनको पता ही नहीं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा आरती शुरू किए लिस्ट को देख के कि पहले कौन सा आइटम करना है, सेकंड कौन सा आइटम करना है। तो अगरबत्ती, दो घंटे अगरबत्ती घुमा रहे हैं वो, महाराज बोलते हैं उनको पता ही नहीं था, इतने नौसिखिया लोग थे, उनको पता ही नहीं, दो घंटे अगरबत्ती उधर, क्योंकि ये नहीं बताया था कि कितने टाइम घुमाना है और कितनी देर तक घुमाना है। तो बोले 2 घंटा अगरबत्ती भी खत्म होने आई है, अभी शायद मेरे को आर्टिकल चेंज करना चाहिए आरती में। तो फिर वो पूरी बुझी हुई अगरबत्ती 2 घंटे बाद रखी, फिर बाद में वो पंचदीप उठाया, फिर उसको 2 घंटे लगे, वो भी बुझ गया पूरा ऐसे करके। फिर बाद में फाइनली पूरी आरती हो गई, उनको लगा ये तो 6 आरती कैसे होगी दिन में, अभी ये 1 आरती में ही पूरे दिन बीत रहा है इसका। फिर प्रभुपाद को लिखते हैं कि ये आरती कैसे करते हैं, फिर पूछे फाइनली ये जो 3 शख्स हैं जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा लिखते हैं, ये है कौन, मैंने इतनी आरती की 2-2 घंटे 1-1 आर्टिकल, ये है कौन। सोचो ये लेवल के हम लोग क्या पॉइंट पे है कि जो वानर सेना प्रभुपाद किन से डील कर रहे थे, व्हाट काइंड ऑफ पीपल प्रभुपाद हैड टू डील विथ, एंड प्रभुपाद एंगेज्ड देम। रावण यूज्ड पीपल, राम एंगेज्ड पीपल, ये डिफरेंस है, वर्ड से समझ में आता है। सिमिलरली प्रभुपाद ऑल्सो एंगेज्ड पीपल, प्रभुपाद को कोई आवश्यकता नहीं थी, वो खुद भी सब कुछ कर सकते थे, लेकिन प्रभुपाद ने उनको एंगेज किया। फाइनली वैंक्विशिंग मिसकंसेप्शन, व्हाट प्रभुपाद डिड वाज इक्वल टू वैंक्विशिंग रावण। तो यहां पर अगर हम ये तुलना करें राम विजय उत्सव की संकीर्तन से और इस्कॉन का राम विजय उत्सव से, प्रभुपाद का न्यूयॉर्क में जाना जो कि एक रावण की लंका के समान, वहां पर जाकर उसका दहन करना, एक बहुत इंटरेस्टिंग आपको मैं स्लाइड दिखाना चाहूंगा, उसको ध्यान से देखना। एवरीवन हैज द सेम स्टार्ट, जैसे कि राम और रावण ये दोनों जो नाम हैं इसकी शुरुआत किससे होती है, रा। एवरीवन हैज द सेम स्टार्ट बट योर एंड विल बी डिसाइडेड व्हाट विल बी योर कर्मा। तो हमारे कर्म से पता चलेगा कि क्या हम राम के पदचिन्हों पर चलते हुए, इसलिए ये बताया गया है कि आजकल जो रावण इतना जलाते हैं, कल जो इतने रावण जले, तो एक जलते हुए रावण के पुतले ने पूछा, जलते हुए रावण के पुतले ने पूछा कि मैं तो रावण था, हां मुझे तो जलना ही था, परंतु तुम लोग कलयुग के जो मुझे जला रहे हो, तुम में से राम कौन कौन है बताओ। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है, अब जिसको कहते हैं ना बॉल इज इन अवर कोर्ट, क्या हमारे पास इसका उत्तर है कि हम में से कौन है जो योग्य हैं उस रावण को जलाने के। तो आइए इस राम विजय उत्सव के इस पर्व पर हम ये सुंदर श्लोक रामचंद्र जी से याचना करते हुए कि ताकि उनके अनुकंपा से, उनकी कृपा से हम हमारे अंदर के रावण के ऊपर विजय प्राप्त कर सके। श्री राम शरणम समस्त जगताम, रामम विना का गति, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम, रामाय कार्यम नमः, रामात्रास्यति काल भीम भुजगो, रामस्य सर्वं वशे, रामे भक्ति रखंडिता भवतु मे, रामत्वमेवाश्रय, बोल सियावर रामचंद्र भगवान की, राम विजय उत्सव महोत्सव की, शिल प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।
श्रीमान शिक्षाष्टकम प्रभु की जय।